मोक्षमार्गस्यनीतारं नेतारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण कहे गए हैं, तो उनमें सर्वप्रथम धर्म ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विजयाय धर्म। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, इनका विचार करने के लिए, इनकी विचारणा के लिए जो स्मृति समन्वाहार होता है, अर्थात मन का एकाग्र होना होता है, वह धर्मीय ध्यान है। अब इसका विवरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा सुंदर किया है। स्मृति समन्वाहार इत्यनुवर्तति, इसका अनुवर्तन चल रहा है स्मृति समन्वाहार का। सब सब प्रत्येकम संबद्धति, वह सबके साथ संबद्ध किया जाता है। आज्ञा विचयाय स्मृति समन्वाहार, आज्ञा की विचारणा के लिए स्मृति का समन्वाहार इत्यादि। तद यथा, उसका स्पष्टीकरण, उपदेष्ट अभावान मंद बुद्धित्वात् कर्मोदयात् सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतु दृष्टांतोपरमे सति। केवली श्रुत केवली जैसे उपदेष्टाओं का अभाव होने के कारण तीन वक्ता बताया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। जैनागम के तीन वक्ता होते हैं, केवली श्रुत केवली और आराती आचार्य। आराती आचार्य अंग पूर्वों के विद्वान होते हैं, लेकिन वो अंग और पूर्वों में से कुछ सारभूत विषय निकाल करके अंग बाह्य श्रुत की रचना करते हैं। तो अंग बाह्य श्रुत के रचनाकार आचार्यों को आराती आचार्य कहते हैं। तो उसके 14 भेद हैं अंग बाह्य के। दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, पुंडरीक, महापुंडरीक, कल्प सूत्र, महाकल्प आदि उसके भेद हैं। अंग बाह्य की रचना करने वाले जो उपदेष्टा थे वो भी अंग और पूर्वों के ज्ञाता थे, बस उनमें और सामान्य अन्य श्रुत केवलियों में अंतर इतना था कि अन्य श्रुत केवलियों ने द्वादशांग को जाना, पर उन्होंने द्वादशांग में से कुछ निकाल करके अंग बाह्य को उपनिबद्ध नहीं किया, अंग बाह्य की रचना नहीं की उन्होंने, वो द्वादशांग के पाठी रहे। पर इन जो आराती आचार्यों ने क्या किया कि मंद बुद्धि जीवों के लिए, आयु शक्ति बल इनमें कमजोर जीवों के लिए उन्होंने ये रचना की अंग बाह्य श्रुत की। ये 14 प्रकार का होता है अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट 12 अंग रूप होता है और अंग बाह्य 14 रूप, 14 प्रकार का होता है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं यहां पर, आज्ञा विचय किसको कहेंगे? तो बोले उपदेष्टा का अभाव होने के कारण, यानी अब तीनों उपदेष्टा यहां बचे नहीं है। अभी जो उपदेशक उपाध्याय परमेष्ठी है वो तो जो उपलब्ध स्रोत है उसका उपदेश करते हैं, पर ये जो मूल उपदेशक थे, मूल वक्ता थे, आगम के मूल वक्ता थे, त्रयो वक्ता रह कहा था। जैनागम के तीन वक्ता होते हैं, चौथा नहीं होता, तो आज कोई वक्ता नहीं है। तो उनका अभाव होने के कारण ये आचार्य कह रहे हैं कि उपदेष्टाओं का, उपदेष्टा का अभाव होने से मंद बुद्धित्वात् और बुद्धिमंद होने के कारण, आज धीरे धीरे बुद्धि तो मंद होती ही जा रही है, बुद्धिमंद होने के कारण गलत कार्यों में बुद्धि तीव्र होती जा रही है। फिर कर्मोदयात्, कर्म का उदय होने के कारण, और पदार्थानां सूक्ष्मत्वाच्च, और पदार्थों की सूक्ष्मता के कारण हेतु दृष्टांतो प्रमेसति। अब कोई पदार्थ वर्णन में आ रहा है, उसको समझाने के लिए जो हेतु दिए जा सकते थे या फिर जो दृष्टांत हो सकते थे, उनका उपरम हो जाने पर, उपरम का अर्थ उनके हेतु और दृष्टांत अब उपलब्ध नहीं रहे, वो रुक गए। हेतु और दृष्टांत रुक चुके हैं, अब मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसा होने पर सर्वज्ञ प्रणीत आगमं प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ प्रणीत आगम को ही प्रमाणीकृत्य, प्रमाण करके, सच मान करके, इत्थमेवेदम, ऐसा ही है ये, यह ऐसा ही है, नान्यथावादिनो जिना इति, जिनेंद्र भगवान असत्यवादी नहीं हो सकते। इस प्रकार गहन पदार्थ श्रद्धानार्थ, गहन पदार्थों में श्रद्धान करने से, अर्थावधारणम, और श्रद्धान करके अर्थ का अवधारण करना, उन पदार्थों का निश्चय कर लेना, आज्ञा विषय, आज्ञा विषय ध्यान। अथवा देखिए, अब दूसरा जो विकल्प दे रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। पहला विकल्प तो सबको पता है, पर ये जो दूसरा विकल्प दे रहे हैं आज्ञा विषय का, वो ऐसा है कि स्वयं विदित पदार्थ तत्वस्य, अपने आप में जान लिया है पदार्थों का स्वरूप जिसने, ऐसे सतह होते हुए परम प्रति पिपादयशो हो, दूसरों के लिए प्रतिपादन करने की इच्छा है जिनको, ऐसे कोई भी आज्ञा विचय धर्म ध्याता स्वसिद्धांत अविरोधीन, अपने सिद्धांत से विरोध न पड़े इस तरीके से, तत्व समर्थनार्थम, तत्व का समर्थन करने के लिए, तर्क नय प्रमाण योजन पर, तर्क नय और प्रमाण इनकी योजना में तत्पर हो जाता है, यानी इनको जोड़ने में परायण हो जाता है, और जोड़ने में परायण होते समय जो उसका स्मृति समन्वाहार है, मन का जो एकाग्र होना है, वह सर्वज्ञाज्ञा प्रकाशनार्थत्वात्, सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने के उद्देश्य से होने के कारण आज्ञा विजय इत्युच्यते, आज्ञा विजय इस प्रकार कहा जाता है। अर्थात जब कोई जिन मत की बातों को विकृत करके या फिर अन्यथा प्ररूपित करके दूषण उत्पन्न करता है जिन शासन में, तब आज्ञा विजय धर्म ध्यानी जो समर्थ है, क्योंकि यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि स्वयं विदित पदार्थ तत्व से जान लिया है पदार्थों का स्वरूप जिसने, ऐसा कोई कुशल विद्वान हो और दूसरों को प्रतिपादित करने का इच्छुक हो, वह अपने सिद्धांत से विरोध न पड़े इस तरीके से तत्व के समर्थन हेतु तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसको तर्क कहते हैं, ऐसा नहीं होगा तो नहीं हो सकता, ये तर्क, व्याप्ति का ज्ञान। धुआं निकल रहा है तो आग है, व्याप्ति का ज्ञान। फिर नए ज्ञाता के अभिप्राय को कहते हैं, प्रमाण श्रुत ज्ञान को कहते हैं, इनको जोड़ने में जो तत्पर है, ऐसा स्मृति समन्वाहार, वो भी आज्ञा विषय कहा जाता है। विषय का अर्थ विचार, चिंतन, मनन, चात्यंधवत मिथ्या दृष्टया। अब देखिए दूसरा अपाय विषय ध्यान है। अब ये जो आज्ञा विषय ध्यान है, इसके माध्यम से आप आक्षेपिणी और विक्षेपिणी कथा कर सकते हैं, यदि आपके अंदर वैसी क्षमता है तो। आक्षेपिणी कथा में अपनी बात रख सकते हैं, और विक्षेपिणी कथा में जो उससे अन्यथा कथन है उसका आप निराकरण भी कर सकते हैं। ये धर्म कथा है, विजिगीषु कथा नहीं, हार जीत की कथा नहीं है। भले ही हरा दें वो किसी को वाद विवाद में, लेकिन ये धर्म कथा उद्देश्य हराने का नहीं है, उद्देश्य जिन मत को प्रस्तुत करने का, स्थापित करने का, सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकट करने का। और इसकी क्षमता सब में नहीं होती, बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि ये ऐसी बात है कि फिर अगर साधु हैं, साधुओं के लिए बताया कि अगर श्रोता को दुर्ध्यान हो जाता है आपके वचनों से, तो प्रायश्चित साधु वक्ता को, बोलने वालों प्रवक्ता को। तो यहां पर जो चारों कथाएं होती है, संवेदिनी, निर्वेदिनी, आक्षेपिणी और विक्षेपिणी। संवेदिनी कथा जो होती है वो धर्म और धर्म के फलों के प्रति प्रीति उत्पन्न करती है। निर्वेदिनी कथा जो होती है वो वैराग्य उत्पन्न करती है। जैसे सुकुमार स्वामी की कथा पढ़ लो आप, तो वैराग्य होने लगता है। और आक्षेपिणी कथा में जिन मत को प्रस्तुत करना होता है, विक्षेपिणी कथा में जो असर्वज्ञ का जो मत है उसका निराकरण करना होता है। अब दूसरा ध्यान है अपाय विजय। अपाय का अर्थ होता है हानि। जात्यंधवत मिथ्या दृष्टयः, जन्मांध की भांति मिथ्या दृष्टि जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्गाद विमुखा। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख है, मोक्षार्थिन सम्यक मार्ग परिज्ञानात् सुदूरमेवा पयंती इति। सम्यक मार्ग परिज्ञान मोक्षार्थी न होना चाहिए, सम्यक मार्ग के अपरिज्ञान से वे सुदूर में अपयंती थी, छोड़ देते हैं। मोक्ष आने वाले को वो उनसे परहेज करते हैं, मिथ्या दृष्टि जी। कोई दूसरी प्रति हम बोलते हैं, मोक्षार्थी न, तो बहुवचन हो गया। मोक्षार्थी न जो रूप है ना, ऋणिनी प्रत्यय, अर्थी न, मोक्षस्य अर्थी अर्थिनो वा मोक्षार्थी मोक्षार्थी न, मोक्ष चाहने वाले जीवों को सम्यक मार्ग परिज्ञान, सम्यक मार्ग का ज्ञान न होने के कारण दूर में सुदूर में बहुत दूर से ही अपयंती थी, टालते हैं वो, सन्मार्ग सन्मार्ग अपाय चिंतनम अपाय विजयम। इस तरह से सन्मार्ग कितना दुर्लभ है, यानी सन्मार्ग का लाभ नहीं हो रहा है इतने सारे जीवों को, ऐसा ध्यान करना वो अपाय विजय ध्यान है। फिर 10 प्रकार के धर्म ध्यान भी आते हैं शास्त्रों में, उनमें अपाय विजय के बाद एक उपाय विजय ध्यान आता है। तो अपाय विजय में तो ये है कि उनके पास अभाव है धर्म का, उनको धर्म का लाभ नहीं मिल रहा है, वो धर्मात्माओं से भी दूर भाग रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है। पर क्या उपाय किया जाए कि जिससे वो स्वीकार करें, वो उपाय विजय ध्यान है, ये अपाय विजय हो गया। फिर इसका दूसरा विकल्प ये भी दे रहे हैं, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्य कथन नाम में प्राणिनो पेयोरिति स्मृति समन्वाहो स्मृति स्मृति समन्वाहारो उपाय विजय। अथवा दूसरे प्रकार से इसमें ऐसा भी ध्यान हो सकता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीन से इमे प्राणिन यह प्राणी कथन नाम अपेय हो कैसे छूट सकते हैं, यानी इनके मिथ्या तो अधिक की हानि कैसे हो सकती है। इस तरह का ध्यान करना भी अपाय विषय। कर्म नाम फिर कहते हैं कर्मों के, कौन से कर्मों के, ज्ञानावरणादि नाम, ज्ञानावरणादिक का द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव प्रत्यय फलानुभवनम प्रति प्रणिधानम। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के कारण होने वाला जो फल का अनुभव है उसके प्रति प्रणिधान यानी ध्यान करना विपाक विजय है। अभी जैसे अपन किस गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय होता है, कितने कर्मों का बंद होता है आदि आदि का अगर अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो फिर अपन विपाक विजय ध्यान कर सकते हैं। विपाक विजय के लिए कर्मों का परिचय आवश्यक है कि इस समय मेरे कौन से प्रकृतियों का उदय है, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, पंचेंद्रिय जाति, फिर एक गोत्र का उदय है, साता साता में से एक का उदय है, ऐसे पूरे प्रकृतियों की गिनती करेंगे अपन तो फिर ये अपाय विषय ध्यान हो जाएगा। बैठे बैठे आप ध्यान में सब प्रकृतियों की गणना कर लो, अपने नाम कर्मों को देख लो कौन से नाम कर्म है, शरीर के वर्ण को देख करके अपन नाम कर्मों का वो लगा सकते हैं कौन सा वर्ण है अभी मेरा, फिर कुरूप सुंदर आकृति आदि को लेकर के, फिर लोकप्रिय और अप्रिय इसको लेकर के आदि आदि बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। इन सब कर्मों का अच्छी तरह अध्ययन करके ये ध्यान अगर लगाते हैं तो फिर ये गुणश्रेणी निर्जरा का कारण होता है ध्यान। इसलिए ये सब स्वाध्याय अपन क्यों करते हैं, स्वाध्याय कि स्वाध्याय बाह्याभ्यंतर भेदेन द्वादशेपी तपो विधो अज्ञान प्रतिपक्षित्वात् स्वाध्याय परमं तपः। तप की अपेक्षा मुनियों में लगाना, साधुओं में लगाना, पर कहते हैं कि बाह्य और आभ्यंतर के भेद से तप के 12 भेद हो जाते हैं, क्योंकि बाह्य तप 6 थे, अभ्यंतर तप 6 थे, अभी उसी का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं, आखिरी तप ध्यान था, तो 6 और 6 12, 6+6 12, तो 12 तप है। तो उन तपों में एक तप ऐसा है जो अज्ञान का विरोधी है, और अज्ञान को नष्ट करने वाला तप होता है, इस कारण से स्वाध्याय परम तप कहलाता है, श्रेष्ठ तप कहलाता है। और दूसरा ऐसा है कि स्वाध्याय ध्यान में साधक होता है। ध्यान किसका करते हैं अपन, किसी ध्येय का करते हैं, और ध्येय का ज्ञान कराने वाला कौन है, आगम। फिर आगम को कैसे जाना जाएगा? स्वाध्याय से। इसलिए भी स्वाध्याय उत्तम तप है। तो ये विपाक विचय ध्यान अगर करना हो किसी को, तो फिर उसकी प्रक्रिया ये है। अभी प्रातः काल गुणस्थानों के वर्णन में अपन ने परसों यानी गत दिवस से पूर्व तत्व सार की पंक्तियां पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि जिसने अणुव्रत अथवा महाव्रत धारण नहीं किए, ऐसा सम्यक दृष्टि भी चारों धर्म ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो विपाक विचय का भी अभ्यास शक्य है। सीता जी पर इतना बड़ा संकट आया तो क्या सोचा उसने? मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने पूर्व भव में वियोग कराया होगा, गुरु की निंदा की होगी या फिर हिंसा की होगी। ये सब विचार कहां से आया? इसका नाम विपाक विचय ध्यान था। इसी तरह अंजना सती, इसी तरह मैना सुंदरी, इसी तरह जितनी भी बड़ी बड़ी सतियां हैं, जितने महापुरुषों के जीवन के ऐसे वृत्तांत हैं जहां कठिनाइयां आती हैं, तो वो धर्म ध्यान कर लेते हैं। अर्थ ध्यान होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम धर्म ध्यान में ही चले जाते हैं, अर्थ ध्यान भी होता है। तो ये विपाक विचय। फिर लोक संस्थान स्वभाव विचयाय स्मृति समन्वाहार संस्थान विचय। लोक का जो संस्थान है, लोक का जो स्वभाव है, उसकी विचारणा के लिए जो स्मृति समन्वाहार होता है, अर्थात चित्त का एकाग्र होना होता है, वह संस्थान विचय है। यानी पूरा त्रिलोक पंडिति, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार, दीपक, ये सब पढ़ लिया और सब जानकारी ले ली कि कैसा क्या लोक है, फिर वो ध्यान में बैठ करके लोक का ध्यान कर लिया, अथवा तीसरा चौथा अध्याय पढ़ करके लोक का ध्यान कर लिया। पृथ्वियां ऐसी नीचे है और नीचे इतने पटल है, 49 पटल है, ऊपर 63 पटल है देवों के। पटल यानी से फ्लोर्स जैसे रहते हैं, मेघ पटल, पाथड़े भी बोलते हैं उसको, प्रस्तार। संस्थान विचय। उत्तम क्षमादि लक्षणों धर्म उक्त। उत्तम क्षमादि नाम का धर्म बता चुके हैं। तस्माद अनपेतम धर्म्यम, उन दसों से अनपेत अविरहित अर्थात उनसे सहित धर्म्य ध्यान होता है। चतुर्विकल्प मौसीयम, उसके चार वेद जान लेना जो ऊपर बतलाया था। तदविरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम भवति। धर्म ध्यान के स्वामियों को बताने वाला अलग सा सूत्र तत्वार्थ सूत्र में आज उपलब्ध नहीं होता, लेकिन पंडित दिवाकर जी और तत्वानुशासन ग्रंथ के कर्ता आचार्य रामसेन अथवा आचार्य नागसेन, ऐसे दोनों नाम आते हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि तत्वार्थ में धर्म ध्यान के स्वामी उल्लिखित है। तत्वार्थ में तो उल्लिखित नहीं है, वर्तमान में जो उपलब्ध तत्वार्थ सूत्र है उसमें नहीं है। तो अगर इसको सूत्र माना जाए, तद विरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम, ये अगर सूत्र हो, कालांतर में लिपिकरण में प्रतिलिपि बनाते समय भी कई बार जो विद्वान लोग होते हैं उनसे कुछ आगे पीछे हो जाती है पंक्तियां, तो यहां पर ये जो है ये हो सकता है ये सूत्र हो। और 9वें अध्याय में 47 सूत्र के स्थान पर 48 सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में 357 357 सूत्र के बजाय 358 सूत्र। ये एक पंक्ति बड़ी महत्व की है। क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि इतने बड़े आचार्य उमा स्वामी अर्थ ध्यान के स्वामी बता रहे हैं कि अर्थ ध्यान कौन से गुण स्थानों तक होता है, रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थानों तक होता है, शुक्र ध्यान कौन से गुण स्थानों में होता है, और धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है वो छोड़ दें। तीन ध्यानों के स्वामी तो वो बता रहे पूरे सूत्र में, शुक्ले चाद्य पूर्व विधान, फिर आर्त ध्यान के लिए स्वामी क्या तदवरत देश विरत प्रवत संहिता नाम। रौद्र ध्यान के स्वामी कौन से? रौद्र मविरत देश विरत यो हो। फिर धर्म ध्यान के स्वामी छोड़ देंगे क्या? इतने बड़ी घटना कैसे संभव है? कुछ चिंतकों का कहना है कि धर्म ध्यान के विषय में दो मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार धर्म ध्यान जो होता है वो संयतों को होता है, छठे सातवें गुण स्थान में होता है और दसवें तक चलता है, ऐसा एक मत है। और दूसरे मत के अनुसार चौथे से लेकर छठे सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। ये मत ज्यादा प्रसिद्ध है, चौथे से सातवें गुण स्थान तक, चार गुण स्थान, चौथा पांचवा छठा सातवां। तो ऐसे दो मत होने के कारण इन्होंने छोड़ दिया। ये जो चिंतन है इसके प्रति एक प्रति चिंतन विनय पूर्वक हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यदि उनके सामने ये दो मत होते तो फिर वो दोनों मतों को भी तो रख सकते थे। ऐसा कोई आदेश था क्या गुरु का कि नहीं जो भी रखना हो बिल्कुल एक ही मत के साथ रखना? जिस विषय में दो मत हो गए हैं पंचम काल में उनको मत प्रस्तुत करना, उस विषय में गौण हो जाना, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वहां पर शुक्ल ध्यान के भी तो दो मत थे ना। यहां तो सीधा सीधा कह दिया शुक्लाचार्य पूर्व वेद आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान व्याख्या में आ गया और मूल में तो इतना ही कहा कि पूर्व वेद यानी श्रुत केवली को शुक्ल ध्यान होता है, इतना ही कह दिया। पर एक केवली ना, बाकी अंत के दो शुक्ल ध्यान जो होते हैं वो केवलियों को, केवली को होते हैं। तो ऐसे स्वामी तो बता दिए लेकिन गुणस्थान रूप स्वामी तो नहीं बताया। पर गुणस्थान रूप स्वामी का व्याख्यान तो किया है यहां पर, जबकि उस काल में मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा उपलब्ध थी कि शुक्ल ध्यान किनको होता है। गाथा एकदम स्पष्ट थी, ओ संतो दुपदत्तम झायदि झाणम विदक विचारम खीण कसाओ झायदि एगत्त विदक विचारम। यानी ग्यारहवें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान होता है, बारहवें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, नीचे नहीं होता। तो क्या हुआ इसका अर्थ? नीचे धर्म ध्यान होता है। और इससे उस सूत्र में बाधा नहीं आएगी, तद विरत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम, क्योंकि अप्रमत्त संयत जो है वो केवल सप्तम गुण स्थान वर्ती नहीं है। अप्रमत्त जो शब्द दिया है सप्तम गुण स्थान में वो ऊपर के गुण स्थानों में लागू रहेगा क्योंकि वो सारे अप्रमत्त है। सातवां तो शुरुआत है अप्रमत्त गुण स्थान। त्रयाणाम ध्यानानाम निरूपणम कृतम, तीन ध्यानों का निरूपण किया जा चुका है। इदानीम शुक्ल ध्यान निरूपयितव्यम, अब शुक्ल ध्यान निरूपण के योग्य है। तद वक्षमाण चतुर्विकल्पम, उसके चार भेद आगे कहे जाएंगे। तत्राद्यो उसमें प्रारंभ के दो के स्वामी निर्देशार्थम इदम उच्यते, स्वामी का निर्देश करने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। शुक्ले चाद्ये पूर्व विद, आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्ववित अर्थात श्रुत केवलियों को होते हैं। पूर्ववित का शुक्ल के श्रुत केवली होता है ऐसा कैसे लगा? तो पूर्व चौदह होते हैं, चौदह पूर्वों का ज्ञान श्रुत केवली को होता है। वक्षमाणेषु शुक्ल ध्यान विकल्पेषु आद्ये शुक्ल ध्याने पूर्व विदो भवत श्रुत केवलन इत्यर्थ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि श्रुत केवली के होते हैं। चाद्य में च शब्द था तो च शब्देन धर्मावपि समुच्चयते, च शब्द से धर्म को भी लगा लेना कि पूर्व श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है, अकेला शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान भी लगा लेना, उसका भी समुच्चय करना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? संग्रह, उसको भी जोड़ लेना उसमें। तत्र व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति रीति। अब इसमें क्या है कि एक न्याय का सूत्र है या न्याय का एक वक्तव्य है कि व्याख्यान से विशेष जानकारी मिलती है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, याद रखने का वाक्य है व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष जानकारी होती है। इस प्रकार श्रेण्यारोहणात् प्राक् धर्मम् श्रेण्यो शुक्ले इति व्याख्यायते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि व्याख्यान से विशेष जानकारी मिलती है, इसी सूत्र की व्याख्या में कह रहे हैं, इसलिए श्रेणी के आरोहण से पूर्व अर्थात सातवें गुण स्थान तक धर्म्यम धर्म ज्ञान होता है। श्रेण्यो शुक्ले, श्रेणी में दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान किया जाता है। अवशिष्टे कस्य भवत इत्यत्र उच्यते, बाकी के अंत के दो शुक्ल ध्यान किनको होते हैं ऐसा पूछने पर यहां कहा जाता है सूत्र, परे केवलिना, अंत के दो केवली भगवान के होते हैं। प्रक्षीण सकल ज्ञानावरणस्य केवलिना, भली भांति नष्ट कर दिया है संपूर्ण ज्ञानावरण को जिनने, ऐसे केवली के संयोगस्य अयोगस्य च, वो चाहे संयोग हो या अयोग हो दोनों के, परे उत्तरे शुक्ल ध्याने भवत, आगे के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। इसको ऐसे क्रम से लेना होगा कि संयोग केवली के तीसरा शुक्ल ध्यान, अयोग केवली के चौथा शुक्ल ध्यान होता है। और श्रेणी में जो शुक्ल ध्यान बताया है वो जब तक मोह का उदय है तब तक पृथक वितर्क, फिर वितराग छद्मस्त अवस्था में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होगा। अब पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान विचार सहित होता है सविचार, और एकत्व वितर्क अविचार होता है। तो यथा संख्यम तद विकल्प प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते, संख्या के अनुसार शुक्ल ध्यान के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र कहा जा रहा है। पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित विपरीत क्रिया निवर्ती, पृथक्त्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित विपरीत क्रिया निवर्ती, ये चार शुक्ल ध्यान है। पृथक्त्व वितर्कम एकत्व वितर्कम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित विपरीत क्रिया निवर्ती चेति चतुर्विधम शुक्ल ध्यान, इस तरह से चार प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है। वक्षमाण लक्षण, आगे कहे जाने वाला है लक्षण जिसका ऐसा है, उपेत्य उस लक्षण को प्राप्त होकर, सर्वेषाम अन्वर्थ ममसेयम, सभी के नाम का नाम के अनुसार अर्थ निश्चित करना, तस्य आलंबना विशेष निर्धारणार्थमा, उनके आलंबन का समान रूप से निश्चय करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं 40वां, त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, त्रि योग त्रियोग वालों को पृथक वितर्क होता है, यानी मन योग वचन योग काय योग किसी भी योग के साथ पृथक वितर्क ध्यान हो जाता है। और पृथक वितर्क ध्यान में योग बदल भी सकते हैं, लेकिन एकत्व वितर्क कैसा होता है, एक योग त्रिएक योग लिखा ना, त्रियोग और एक योग, तो एकत्व वितर्क में एक ही योग रहेगा बदल नहीं सकता। फिर तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग वालों को होता है, केवली भगवान को होगा तो काय योग रहेगा तभी होगा, मनोयोग और वचन योग का पहले क्षय करना पड़ेगा उनको, और तब जाकर के जब सूक्ष्म काय योग में चले जाएंगे, बादर काय योग का भी नाश करेंगे फिर सूक्ष्म काय योग में जाएंगे तब जाकर के ये शुक्ल ध्यान बनेगा, इसीलिए सूक्ष्म क्रिया शब्द दिया। और फिर अयोग आना, अयोग जो होते हैं उनको चौथा शुक्ल ध्यान होता है, जिनके पास मन वचन काय के योग है ही नहीं उनको चौथा शुक्ल ध्यान होता है। योग शब्दों व्याख्यात अर्थ, योग शब्द का अर्थ व्याख्यान में आ चुका है, काय वांग मन कर्म योग इत्यत्र, कोई सोचे कि कहाँ आया है तो आचार्य याद दिलाते हैं भी, चलो ठीक है तुम्हें याद नहीं है हम बता देते हैं यहाँ आया है। तो उक्तैश चतुर्भिः कथित चारों शुक्ल ध्यान विकल्पैः, शुक्ल ध्यान के विकल्पों से त्रियोगादीनां चतुर्णां यथा संख्येनापि संबंधो वेदितव्यः। ये सूत्र में जो त्रियोग, एक योग, काय योग और अयोग चार बताए ना, उनका क्रमशः एक एक संख्या के साथ में अभिसंबंध जान लेना। त्रियोगस्य पृथक वितर्कम्, त्रियोग वालों के लिए पृथक वितर्क। त्रिषु योगेष्वेक योगस्य एकत्व वितर्कम्, तीन योगों में से किसी एक योग वालों के एकत्व वितर्क। काय योगस्य सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, फिर काय योग वालों के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी केवली भगवान की। तीसरा शुक्ल ध्यान, अयोगस्य विपृथक क्रिया निवर्ती तीति, अयोग जो है उनके लिए विपृथक क्रिया निवर्ती नाम का शुक्ल ध्यान। इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान का एक दूसरा नाम भी है, समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती। समुच्छिन्न क्रिया, विपरत रुक गई, समुच्छिन्न नष्ट हुई, अभिप्राय हुई क्रिया जहां पर योग रूप परिणति स्पंदन समाप्त हो गया। चौदहवें गुण स्थान में योग रहता ही नहीं है, तो उसको विपरत क्रिया भी कह सकते हैं और समुच्छिन्न क्रिया भी कह सकते हैं, एक ही बात। इसके आगे का विवरण अपन आगामी सत्र में देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। जय नम जय प्रशासन।